بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ریڈیو تہران ہے، اسلامی گنراجیہ ایران کی آواز۔
ریڈیو تہران کے سمانیہ شروتا زہرا زیدی اور ساتھیوں کا سلام سویکار کریں۔ پریے شروتا متروں، کارکرم کا شبھارمبھ پوتر قرآن کے سورہ لقمان کی 16، 17 اور 18 آیتوں کی تلاوت اور انواد سے کیا جا رہا ہے۔ قاری ہیں شری مصطفیٰ اسماعیل۔
بسم الله الرحمن الرحيم، يا بني إنها فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها
اللہ کے نام سے جو اتیانت کرپاشیل اور دیاوان ہے۔ لقمان نے کہا، ہے میرے بیٹے، یدی وہ کرم رائی کے دانے کے برابر بھی ہو، پھر وہ کسی چٹان کے بھیتر ہو یا آکاشوں یا دھرتی میں، ایشور اسے پرلے میں سامنے لے آئے گا۔ نسندے ایشور سوکشم درشی اور جانکار ہے۔ ہے میرے بیٹے، نماز قائم کرو اور بھلائی کا آدیش دو اور برائی سے روکو، اور جو بھی مصیبت تم پر پڑے اس پر دھیر کرو، نشچے ہی یہ بڑے ساہس کا کام ہے۔ اور لوگوں کے سامنے گھمنڈ سے اپنا منہ ٹیڑھا نہ کرو، اور نہ دھرتی پر اکڑ کر چلو، निसंदेह ईश्वर किसी अकड़ने वाले और इतराने वाले को पसंद नहीं करता।
दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा। हमारे प्रसारण को आप शॉर्ट वेव में 31 मीटर बैंड बराबर 9620 किलोहर्ट्ज पर सुन रहे हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindi@ws.irib.ir और हमारी वेबसाइट का पता है parstoday.ir/hi। दोस्तों, आज गुरुवार है, इस्फन माह की 25, शाबान की 23 और मार्च की 16 तारीख। हमारे आज के कार्यक्रमों की रूपरेखा कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले आप विश्व समाचार सुनेंगे, उसके उपरांत राजनीतिक चर्चा का दैनिक कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। राजनीतिक चर्चा के उपरांत आप सुनेंगे कार्यक्रम आज की बात और सभा का अंतिम कार्यक्रम होगा सफल महिलाएं। तो दोस्तों, ये तो थी हमारे आज के कार्यक्रमों की रूपरेखा और अभी आप कुछ क्षणों में रेडियो तेहरान से विश्व समाचार सुनेंगे। अब आप रेडियो तेहरान से विश्व समाचार सुनिए।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आज के मुख्य समाचारों का सारांश। राष्ट्रपति रईसी का कहना है कि दुश्मन ने हमारी प्रगति को रोकने के लिए जनता में निराशा फैलाई। तेहरान का कहना है कि जनरल कासिम सुलेमानी मुस्लिम देशों और राष्ट्रों के बीच भाईचारे के सूत्रधार थे। इराक में एक सैन्य हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह, कई सैनिक मारे गए। भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर नकेल कसने की कोशिश जारी है। और अब आप मरियम मेहरदारी और अख्तर रिज़वी से विस्तार से समाचार सुनिए।
राष्ट्रपति रईसी ने कहा है कि विदेश में रहने वाले ईरानियों के लिए अपनी पहचान सुरक्षित रखना बहुत महत्वपूर्ण काम है। सईद इब्राहिम रईसी ने विदेशों में रहने वाले ईरानियों को संबोधित करते हुए कहा कि इन ईरानियों को हम एक ईरानी नागरिक की ही दृष्टि से देखते हैं। बुधवार को तेहरान में ईरान से बाहर रहने वाले ईरानियों की एक बैठक में राष्ट्रपति ने उनसे विदेश में अपनी राष्ट्रीय पहचान को सुरक्षित रखने का आह्वान करते हुए कहा कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। इब्राहिम रईसी के अनुसार ऐसा न हो कि विदेश में रोजगार या शिक्षा प्राप्त करने के नाम पर ईरानियों का स्वदेश से संपर्क समाप्त हो जाए। उन्होंने अत्याचारों के मुकाबले में देश की रक्षा तथा क्षेत्र से वर्चस्ववादियों के प्रभावों को कम करने जैसे कामों को ईरानी राष्ट्र के लिए महान सम्मान बताया। राष्ट्रपति ने कहा कि ईरानी युवाओं ने चुनौतियों को अवसर में परिवर्तित करके विज्ञान, तकनीक और उद्योग के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां अर्जित की हैं।
ईरान का कहना है कि जनरल कासिम सुलेमानी मुस्लिम देशों और राष्ट्रों के बीच शांति और भाईचारे के सूत्रधार थे। इस्लामी गणतंत्र ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नासिर गनानी ने कहा कि जनरल शहीद कासिम सुलेमानी इस्लामी देशों और राष्ट्रों के बीच शांति, मेल मिलाप और भाईचारे के सूत्रधार थे। ईरान के कुछ फोर्स के कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी और इराक के पॉपुलर फोर्स हश्दुशावी के डिप्टी कमांडर अबू महदी अल मोहंदिस को उनके 8 गार्डों के साथ अमेरिका ने 3 जनवरी 2020 में ड्रोन विमान से आतंकी हमला करके शहीद कर दिया था। اس کے کچھ ہی دن بعد ایران نے عراق استھت امریکی سینیہ چھاونی عین الاسد پر کئی میزائل فائر کیے تھے اور یہ گھوشنا کی تھی کہ صرف ایک جھلک ہے اور شہید سلیمانی کے خون کا اصلی انتقام لینا ابھی باقی ہے۔ ایران کے ودیش منترالے کے پروکتا ناصر گنانی نے گروار کو ٹویٹ کیا کہ جنرل قاسم سلیمانی نہ کیول آتنکواد کے خلاف لڑائی میں نائک اور کھیتر میں سرکشا کے نرماتا ہیں بلکہ وہ مسلم دیشوں اور راشٹروں کے بھی شانتی صلح اور بھائی چارے کے سوتردھار بھی تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ اصلی دشمن کو پہچانتے تھے اور ان کی نظر دور تک دیکھتی تھی۔
ایران کی سروچ راشٹریہ سرکشا پریشد کے سچیو کا کہنا ہے کہ فارسی کھاڑی میں دشمنی کے بجائے اب سہیوگ اور ایکجٹتا کو جگہ ملنی چاہیے۔ اسلامی گڑتنتر ایران کی سروچ راشٹریہ سرکشا پریشد کے سچیو اور سپریم لیڈر کے پرتندھی علی شام خانی سنیکت عرب امارات کے دورے پر ہیں۔ انہوں نے سنیکت عرب امارات کے اپنے سمکش شیخ تحنون بن زائد آل نہان سے ملاقات میں اپنے پڑوسیوں کے ساتھ ویاپک نرنتر اور رچناتمک سہیوگ کے بارے میں ایران کی اپرورتنی ودیش نیتی پر بل دیا اور کہا کہ موجودہ چنوتیوں پر قابو پانے کے لیے جن کا جاری رہنا کھیتر کے کسی بھی دیش کے ہت میں نہیں ہے سہیوگ اور ایکتا کو شتروتا کا استھان لینا چاہیے۔ انہوں نے فارس کی کھاڑی کے رنتک دیشوں کے بیچ مت بھیدوں اور اوشواس کے استھتو کو کھیتر کے آرتھک وکاس کے لیے گمبھیر بادھا اور کھیتر کے باہر کے دشمنوں کی ایک اچھا قرار دیا۔ اس ملاقات میں شیخ تہنون بن زائد نے بھی ایڈمرل شمخانی کی سنیکت عرب امارات کی مہتوپورن یاترا پر پرسنتا ویکت کی اور کہا کہ مہان اور شکتیشالی دیش ایران کے ساتھ سہیوگ اور دوستی سنیکت عرب امارات کے لیے مہتوپورن اور مولیوان ہے۔
چین کا کہنا ہے کہ دنیا اور کھیتر میں ہونے والے پریورتنوں کے باوجود وہ ایران کے ساتھ اپنے میتری پورن سمبندھوں کو ادھک وسترت کرنا چاہتا ہے۔ ایران میں چین کے راجدوت چانگ ہووا نے تہران میں بدھوار کو ایک بیٹھک کو سمبودھت کرتے ہوئے کہا کہ ان کا دیش وشو شانتی کے لیے ایسے سکاراتمک قدم اٹھانا چاہتا ہے جس کا ادھارن حالیہ شتابدی میں نہیں ملے گا۔ انہوں نے کہا کہ چین کی نئی وکاس نیتی نشچت روپ سے سنہرے اوسر پیدا کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ یہ نیتی ایران اور چین کے بیچ ہر کھیتر میں سہکاریتا بڑھانے میں سہایک سدھ ہوگی۔ چینی راجدوت نے اس دیش کی میزبانی میں ایران تتا سعودی عرب کے بیچ ہونے والے سمجھوتے کے سندر میں کہا کہ تہران اور ریاض نے دویپکشی سمبندھوں کو بڑھانے کے لیے ایک سمے سیما نردھارت کی ہے اور اسی کے ساتھ انہوں نے پرسپر سہیوگ کے لیے ٹھوس آدھار تیار کیے ہیں۔
سیریا کے راشٹرپتی بشار اسد کا کہنا ہے کہ زیلنسکی کے ساتھ پشچم نے تیسرا وشو یدھ آرمبھ کر دیا ہے۔ روس کی یاترا پر گئے سیریا کے راشٹرپتی بشار اسد کا کہنا ہے کہ پشچم نے یوکرین کے سہارے تیسرے وشو یدھ کو شروع کر دیا ہے۔ یار ریانوویستی چینل کو دیے ساکشاتکار میں بشار اسد نے کہا کہ امریکہ کے نیتروت میں پشچمی دیشوں نے یوکرین میں تیسرا یدھ آرمبھ کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پہلے وشو یدھ پارمپرک ڈھنگ سے لڑے جاتے تھے، اس سمے کچھ دیشوں کی سینا کچھ انیہ دیشوں کی سینا کے ورودھ یدھ کرتی تھی، کنتو ورتمان سمے میں سب کچھ بدل چکا ہے۔
عراق میں ایک سینا ہیلی کاپٹر کے گھر کر دھست ہو جانے سے 7 لوگ مارے گئے۔ ایران پریس کے انوسار عراق کے سنچار مادھیموں نے بتایا ہے کہ بدھوار کی شام عراق کے دہک نامک پرانت میں ایک سینا ہیلی کاپٹر گر کر تباہ ہو گیا۔ یہ ہیلی کاپٹر تیل سمردھ کھیتر میں گرا۔ عراق کی سنچار مادھیموں کے انوسار یہ ہیلی کاپٹر ترکی کی سینا سے سمبندھت بتایا جا رہا ہے۔ اس درگھٹنا میں وہاں کے 7 سینک مارے گئے ہیں۔ دوسری اور ترکی کے رکشا منترالے نے عراق کے دہک پرانت میں اپنے کسی بھی سینیہ ہیلی کاپٹر کے درگھٹنا گرست ہونے کی خبر کا کھنڈن کیا ہے۔
آتنکوادی گروہ داعش کے بچے کچھ تتوں کے خلاف سنگھرشرت عراقی سینا نے کرکوک میں تکفیری آتنکوادی گروہ داعش کے ایک گپت ٹھکانے کو نشٹ کر دیا۔ بغداد علیوں کی رپورٹ کے مطابق عراقی سشستر سینا کے جنرل کمانڈ کے پروکتا یحییٰ رسول نے کہا ہے کہ عراقی سشستر بلوں نے کرکوک کے وادی اشائی علاقے میں آتنکوادی گروہ داعش کے ایک گپت ٹھکانے کو نشٹ کر دیا۔ عراق کی سشستر بل کے کمانڈر کے پروکتا نے کہا کہ آپریشن ایک خفیہ اور تلاشی ابھیان کے دوران چلایا گیا تھا۔
دلی پولیس نے کشمیر میں میڈیا بلیک آؤٹ اور سرکار کے دمن پر چرچا کرنے کے لیے ایک اور کاریکرم کی انومتی دینے سے انکار کر دیا ہے۔ ایک کاریکرم بدھوار 15 مارچ کو گاندھی پیس فاؤنڈیشن میں آیوجت کیا جانے والا تھا۔ ابھی کچھ دن پہلے ہی دلی ہائی کورٹ دوارا ورتمان بھارت کے سندرب میں فاسی واد کو سمجھنا وشے پر ایک سیمینار کو رد کرنے کے دلی پولیس کے آدیش کو رد کرنے کو کہہ دیا گیا تھا۔ دلی پولیس نے ایک آدیش میں کہا کہ اس کے پاس ایسے ان پٹ ہیں کہ اگر کاریکرم ہونے دیا گیا ہوتا تو قانون اور ویوستھا کی سمسیا ہو سکتی ہے۔ दिल्ली पुलिस की ओर से कहा गया है कि उसे मिले इनपुट में बताया गया है कि यह कार्यक्रम एक गुमनाम ग्रुप द्वारा आयोजित किया जा रहा था और आयोजकों से संपर्क करने के प्रयास असफल रहे।
वेस्ट बैंक के उत्तर में स्थित नाबला शहर कल और गुरुवार की सुबह से ही अवैध अधिकृत शासन के सैनिकों और फिलिस्तीनी युवकों के बीच संघर्ष का मैदान बना हुआ है। इरना की रिपोर्ट के अनुसार बुधवार की रात को जायमी सैनिकों ने वेस्ट बैंक के उत्तर में नाबला शहर पर दबाव बोल दिया, जिसमें कम से कम 28 फिलिस्तीनी घायल हो गए। जायमी सैनिकों के हमलों के जवाब में फिलिस्तीनी मुजाहिदीन और संघर्षकर्ताओं ने जायमी आबादी के एक क्षेत्र में जायमी सैनिकों के एक वाहन को निशाना बनाया और जायमी सैनिकों पर गोलियां चला दी, जिसमें 3 जायमी सैनिकों के घायल होने की सूचना है।
ज़ायनी शासन में चल रहे मतभेदों के बीच अतिग्रहणकारी ज़ायनी शासन के राष्ट्रपति ने एक बार फिर आंतरिक मतभेदों के चलते इसराइल के पतन को लेकर कड़ी चेतावनी दी है। फिलिस्तीन की समान न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार अतिग्रहणकारी ज़ायनी शासन में चल रहे आपसी मतभेदों के दौरान इसराइल के राष्ट्रपति ने एक बार फिर इसराइल के आंतरिक पतन को लेकर कड़ी चेतावनी दी है।
इसराइल समाचार पत्र हारिस के अनुसार सभी विशेषज्ञ इस बात पर सहमत हैं कि इसराइल आज एक राजनीतिक गतिरोध का शिकार है। हिब्रू भाषा के इस अखबार ने लिखा है कि सैकड़ों यहूदी अमरीकी इसराइली वित्त मंत्री ब्रेडबेल समुच के उस होटल के सामने विरोध प्रदर्शन करेंगे जहां उनका भाषण होगा।
अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का कहना है कि लीबिया में एक क्षेत्र से लगभग 2.5 टन यूरेनियम गायब हो गया है। रॉयटर्स के अनुसार एक गोपनीय रिपोर्ट में आईएईए के महासचिव राफेल ग्रोसी ने इस एजेंसी के सदस्य देशों और वहां के निरीक्षकों को सूचित किया है कि लगभग 2.5 टन के यूरेनियम के 10 ड्रम उस स्थान से गायब हो गए हैं जहां पर थे। रिपोर्ट में कहा गया है कि इसकी जांच का काम आरंभ किया जाएगा।
रूसी राष्ट्रपति ने जोर देकर कहा है कि यूरोपीय देशों में स्वतंत्रता की कमी के कारण नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन विस्फोटों पर टिप्पणी करने का साहस नहीं है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बुधवार को रूस 1 टेलीविजन चैनल के साथ साक्षात्कार में ये बात कही।
व्हाइट हाउस के ऑफिस मैनेजमेंट एंड बजट के डायरेक्टर का कहना है कि इस देश में महंगाई उच्च स्तर पर पहुंच गई है। और इसी के साथ रेडियो तेहरान से समाचार समाप्त हुए।
यह रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज। राजनीतिक चर्चा। दोस्तों, मैं हूं रविश जैदी और आपका स्वागत है राजनीतिक चर्चा के दैनिक कार्यक्रम में। आज के कार्यक्रम में हम सबसे पहले बात करेंगे इस्लाम और मुसलमानों से नफरत की वजह क्या है, इसके बारे में
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नासिर,
और फिर बात करेंगे बशार असद की रूस यात्रा और पुतिन के साथ हुई मुलाकात के बारे में
सीरिया के राष्ट्रपति बशार असद ने,
और अंत में चलेंगे भारत जहां संसद में हो रहे हंगामों के बारे में दिल्ली से हमारे संवाददाता आपको विस्तार से बताएंगे। श्रोताओं, तो सबसे पहले बात करते हैं विश्व भर में बढ़ते इस्लामोफोबिया के बारे में। इस समय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस्लामोफोबिया है, यानी इस्लाम से डराया जा रहा है, और इस पर ध्यान योग प्रतिक्रिया भी सामने आई है। इस्लामोफोबिया से मुकाबले के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने एक बयान जारी किया है। इस संबंध में एक रिपोर्ट पेश कर रही है हमारी साथी मरियम मेहरदादी।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नासिर कनानी ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा है कि इस्लाम धर्म और दया के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शांति, दोस्ती और मानवता को एक दूसरे के साथ जिंदगी गुजारने के संदेशक हैं। उन्होंने कल बुधवार को इस्लामोफोबिया से मुकाबले के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर अपने ट्वीट पर लिखा, इस्लाम से डरने वाले और इस्लाम के खिलाफ काम करने वाले किसी भी मानवीय और आसमानी धर्म के मूल्यों पर विश्वास नहीं रखते हैं और अपने अवैध हितों को समस्त लोगों के मध्य फूट डालने, मतभेद फैलाने और विवाद कराने में देखते हैं। इस समय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस्लामोफोबिया है, यानी इस्लाम से डराया जा रहा है और इस पर ध्यानयोग्य प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। 15 मार्च वर्ष 2022 को राष्ट्रसंघ ने एक प्रस्ताव पारित करके इस दिन को इस्लामोफोबिया से मुकाबले के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है और राष्ट्रसंघ का ये कार्य इस्लामोफोबिया से मुकाबले की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ईरान उन देशों में से एक है जिन्होंने इस मसौदे को तैयार और उसे पारित कराने में काफी प्रयास किया। इस प्रस्ताव को इस्लामी देशों की ओर से पेश किया गया और ईरान और दूसरे 5 देशों ने इससे संबंधित वार्ता का नेतृत्व किया। इस्लामोफोबिया और मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने का कार्य विशेषकर 11 सितंबर 2001 को अमेरिका में होने वाले हमलों के बाद गति पकड़ गया। ये कार्य पश्चिमी देशों में सबसे अधिक हो रहा है। पैगंबर इस्लाम का अपमानजनक कार्टून छापना, पवित्र कुरान को जलाना, इस्लामी सेंटरों और मस्जिदों आदि पर बारंबार किए जाने वाले हमलों को इसी परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है। वास्तव में इस्लामोफोबिया पश्चिम में नित नए व व्यापक रूप धारण करता जा रहा है और उसका नतीजा ये हो रहा है कि इस्लाम और मुसलमानों के साथ होने वाली हिंसा में दिन प्रतिदिन तेजी आती जा रही है। सवाल ये पैदा होता है कि इस्लाम और मुसलमानों की छवि पश्चिमी देशों में सबसे अधिक क्यों बिगाड़कर पेश की जाती है। कुछ जानकार हलकों का मानना है कि इसकी एक महत्वपूर्ण वजह यह है कि जो लोग इस्लाम के बारे में विभिन्न प्रकार के गलत विचार रखते हैं वे इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ दुष्प्रचार करते हैं, जबकि कुछ लोगों को इस बात का भय है कि जिस तरह से इस्लाम पश्चिमी देशों में फैल रहा है, अगर ये प्रक्रिया जारी रही तो अगले कुछ दशकों में पश्चिमी देशों में मुसलमानों की ध्यान योग्य संख्या हो जाएगी, इसलिए वे इस्लाम को फैलने से रोकने के लिए उसकी छवि बिगाड़ कर पेश कर रहे हैं और इस संबंध में वे किसी प्रकार के संकोच से काम भी नहीं ले रहे हैं।
और अब चर्चा करते हैं सीरियाई राष्ट्रपति की मास्को यात्रा के बारे में। सीरिया के राष्ट्रपति बशार असद ने बुधवार को मास्को में अपने रूसी समकक्ष व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की है। राजनीतिक समीक्षकों ने इस भेंटवार्ता के विभिन्न आयामों की समीक्षा की है। इस बारे में अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे साथी कायम रिजवी।
सीरिया के राष्ट्रपति बशार असद ने बुधवार को रूस की राजधानी मास्को में अपने रूसी समकक्ष के साथ मुलाकात की। हालिया मुलाकात से पहले रूस और सीरिया के राष्ट्रपतियों की भेंटवार्ताएं सितंबर 2021 में हुई थी, जब असद मॉस्को की यात्रा पर गए थे। हालांकि इससे पहले भी सीरिया और रूस के राष्ट्रपति दमिश्क और मॉस्को की यात्राओं के दौरान आपस में मुलाकातें कर चुके हैं। पिछले 12 वर्षों के दौरान सीरिया और रूस के द्विपक्षीय संबंध लगातार प्रगति के मार्ग पर अग्रसर रहे हैं। सीरिया के राष्ट्रपति बशार असद की हालिया रूस यात्रा कई आयामों से समीक्षा के योग्य है। पहली बात तो यह है कि यूक्रेन युद्ध आरंभ होने के बाद बशार असद की ये मॉस्को की पहली यात्रा है। सीरिया उन देशों में से एक है जिसने यूक्रेन युद्ध में खुलकर रूस का ही साथ दिया है। इस भेंटवार्ता में बशार असद ने कहा कि मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि पश्चिम ने यूक्रेन के बहाने जो युद्ध आरंभ किया है उसमें दमिश्क पूरी तरह से मॉस्को के साथ है। इस यात्रा का एक अन्य आयाम ये भी है कि ये चार पक्षी वार्ता से पहले होने वाला सफर है। मॉस्को में सीरिया, तुर्की, ईरान और रूस की सम्मिलिति से 15 और 16 मार्च को इन देशों के विदेश उप मंत्रियों के स्तर की बैठक होने जा रही है। इन देशों में एक देश तुर्की वो ही है जिसने सीरिया संकट के दौरान वहां पर सक्रिय आतंकवादियों का खुलकर साथ दिया था। इसके अतिरिक्त कई बार उसने सीरिया की संप्रभुता का भी उल्लंघन किया। हालांकि ईरान और रूस वे देश हैं जिन्होंने सीरिया संकट के दौरान आतंकी गुटों का मुकाबला करने के लिए न केवल अपने सैन्य सलाहकार वहां पर भेजे बल्कि कूटनीति के माध्यम से भी इस संकट को समाधान करने के लिए अथक प्रयास किए। सीरिया के राष्ट्रपति बशार असद की रूस यात्रा ऐसे समय में हो रही है कि जब हालिया कुछ महीनों के दौरान तुर्की ने कई बार सीरिया से अपने संबंध सामान्य करने की मांग की है। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान ने पिछले साल संचार माध्यमों की मौजूदगी में ये बात कही थी कि मैंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से अनुरोध किया है कि वे सीरिया के राष्ट्रपति बशार असद से मेरी एक त्रिपक्षीय वार्ता करवाएं। 28 सितंबर 2022 को मॉस्को में रूस, सीरिया और तुर्की के रक्षा मंत्रियों के बीच विचारों का आदान प्रदान हुआ था। अब ऐसा लग रहा है कि बशार असद की रूस यात्रा के दौरान तुर्की के साथ संबंधों के मुद्दे पर व्लादिमीर पुतिन के साथ उनकी बात हुई हो।
और अब रुक करते हैं भारत का। भारत की संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण में लगातार हंगामा जारी है। इस बार विपक्ष से ज्यादा सत्ता पक्ष के सांसद हंगामा कर रहे हैं और संसद की कार्रवाई नहीं चलने दे रहे हैं। विपक्षी पार्टियों का आरोप है कि जेसीपी की मांग को न मानने के लिए सत्ता पक्ष इस तरह से हंगामा कर रहा है। वहीं बीजेपी भी राहुल गांधी से माफी मांगने की मांग पर अड़ी हुई है। इस बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं दिल्ली से हमारे संवाददाता शमशाद काजमी।
भारतीय संसद के दोनों सदनों में आज लगातार चौथे दिन भी हंगामा हुआ और कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। केंद्र की सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लंदन में दिए गए बयानों को लेकर उनसे माफी मांगने पर अड़ी हुई है। वहीं विपक्ष भी अदानी मामले में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर संयुक्त संसदीय समिति द्वारा इसकी जांच कराने की मांग से पीछे हटने को तैयार नहीं है। भाजपा के सांसदों ने भी अपनी मांग को लेकर आज भी हंगामा किया और विपक्ष के साथ साथ वे भी सदन नहीं चलने दे रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि ऐसा पहली बार हो रहा है कि सत्ता पक्ष के सांसद ही सदन नहीं चलने दे रहे हैं। लंदन से वापसी पर राहुल गांधी आज संसद पहुंचे थे। कांग्रेस और विपक्षी दलों ने अडानी मामले को लेकर संसद से सड़क तक अपना विरोध जारी रखा है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस ने अडानी विवाद और कई अन्य मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन किया और इस मामले की जांच हेतु जेपीसी के गठन की मांग दोहराई। इसी मुद्दे को लेकर विपक्षी दलों के सांसदों ने संसद के बाहर मानव श्रृंखला बनाई और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी द्वारा अडानी विवाद की जाँच की मांग की। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा,
जो भ्रष्टाचार के मामलों की जाँच करती है क्यों नहीं शिकायत दे रही, हम लोग सीबीआई क्यों नहीं शिकायत दे रही है, मैं लगातार समय मांग रहा हूं, समय नहीं मिल रहा है। तीन तीन दिन छापेमारी करने की फुर्सत है और तीन मिनट मिलके शिकायत देने की फुर्सत नहीं है।
केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि राहुल गांधी को अपने लंदन सेमिनार में दिए गए वक्तव्यों के लिए माफी मांगनी चाहिए और हम इस मुद्दे पर चुप नहीं रहेंगे,
क्योंकि देश के लोगों ने कांग्रेस को नकार दिया है, राहुल गांधी को नकार दिया है, तो इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि देश को ही बदनाम करे, हमारे लोकतंत्र व्यवस्था को गाली दे, हमारे पार्लियामेंट संसद को नीचा दिखाने के लिए विदेश में जा करके अनाप शनाप बातें करे, ये हम कभी भी मंजूर नहीं करेंगे और हम चुपचाप नहीं बैठेंगे।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि माफी का सवाल ही नहीं उठता। उन्होंने कहा कि ये सब अडानी मामले में जेपीसी की हमारी मांग को नजरअंदाज करने की एक साजिश है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी ने भाजपा पर निशाना साधा और कहा कि आए दिन सत्ता पक्ष के नेता संसद की कार्रवाइयों को बाधित करते हैं, लेकिन इसका दोष विपक्ष पर मढ़ते हैं। उन्होंने कहा कि यदि मोदी सरकार में हिम्मत है तो राहुल गांधी के भाषण पर संसद में चर्चा कराने की अनुमति दे। विपक्ष का आरोप है कि उसे संसद में बोलने नहीं दिया जाता है और राहुल गांधी ने लंदन में जो कुछ कहा है वे वास्तविक है। शमशाद काजमी, रेडियो तेहरान, दिल्ली।
दोस्तों, राजनीतिक चर्चा का ये दैनिक कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है।
दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा और अब आपकी सेवा में प्रस्तुत है हमारा अगला कार्यक्रम आज की बात। आज की बात।
दोस्तों, कार्यक्रम आज की बात में आपका स्वागत है। रविश जैदी का सलाम स्वीकार कीजिए। आज के कार्यक्रम में संविधान की होती लिंचिंग के बारे में चर्चा करेंगे, हमारे साथ बने रहें। दोस्तों, भारत में इधर कुछ वर्षों से ये स्पष्ट रूप से देखा जा रहा है कि केंद्र की मोदी सरकार और ज्यादातर राज्य सरकारों द्वारा कानून और संवैधानिक एजेंसियों का इस तरह इस्तेमाल किया जा रहा है कि जैसे इस देश में ना संविधान बचा है और ना ही अदालतें। लेकिन ध्यान योग बात यह है कि एक ही तरह के मामले में जहां अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े हुए लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होती हुई दिखाई देती है, वहीं बहुसंख्यक समुदाय के लोग उसी जुर्म में हल्की फुल्की कार्रवाई के बाद आजाद और मूंछों पर ताव देते हुए देश के संविधान को मूंछ रहा रहे होते हैं। इस बीच भारत में धर्म के नाम पर पहले कट्टरपंथी संगठनों द्वारा मारपीट और हत्या की खबरें सामने आती थीं, लेकिन अब पुलिस प्रशासन समेत सरकारी तंत्र भी धर्म के नाम पर भारतीय कानून और संविधान की सड़कों पर खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं। वैसे इसमें कोई शक नहीं है कि अपराध तो अपराध है, जैसे अपराधी तो अपराधी ही होता है। उसको न किसी धर्म से जोड़कर देखना चाहिए और न ही किसी संगठन या पार्टी से। यही तो भारत का संविधान भी कहता है, कानून की नजर में सब बराबर होते हैं। लेकिन अब ऐसा लगता है कि कानून की नजर को ही नजर लग गई है। यही कारण है कि एक ओर प्रयागराज में उमेश पाल की हत्या को लेकर इतनी तेजी से कार्रवाई हो रही है कि केवल शक की बुनियाद पर घरों पर बुलडोजर चला दिया जा रहा है और बिना अदालती कार्रवाई के आरोपियों को मौत के घाट उतार दिया जा रहा है। काश ऐसी ही कार्रवाई उनके खिलाफ भी हो जो देश में नफरत के बीज बो रहे हैं, गाय के नाम पर इंसानों के खून की होली खेल रहे हैं, जो खुलेआम मुस्लिम युवाओं को जिंदा जला रहे हैं। यहाँ ये भी सवाल उठता है कि एक ओर बिल्कीस बानो के बलात्कारियों को और उसके परिवार वालों के हथियारों को जेल से बाहर लाने के लिए सरकार एड़ी चोटी का जोर लगा देती है, वहीं इंसाफ की लड़ाई लड़ने वाला देश का आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट एक पुराने मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा होता है। यहाँ ये भी सवाल उठता है कि क्या खुलेआम गाय के नाम पर बेगुनाह मुसलमानों की हत्या के गंभीर आरोपों के बाद बजरंग दल जैसे कट्टरपंथी गुटों पर प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए? क्या उसके आतंकी सदस्य समाज में टकराव की स्थितियां पैदा नहीं कर रहे हैं, सांप्रदायिक विभाजन को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं? क्या उसकी इन हरकतों को देश विरोधी गतिविधियां मानकर उस पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाना चाहिए? बजरंग दल जैसे भगवा आतंकी हिंदू संगठनों के बारे में भारत के वरिष्ठ पत्रकार मुकेश कुमार बता रहे हैं कि कैसे इन गुटों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है।
बजरंग दल की गतिविधियां अब बड़ी चिंता का सबब बनती जा रही हैं। खासतौर पर हरियाणा में दो मुस्लिम युवकों को जिंदा जलाए जाने की घटने के बाद ये साफ लग रहा है कि बजरंग दल कानून की तमाम सीमाएं लांघता जा रहा है। बात अगर इक्का दुक्का आपराधिक वारदातों की होती तो चिंता शायद इतनी न बढ़ती, मगर पूरा का पूरा संगठन जिस तरह से हिंसा और आतंक पैदा करने वाली गतिविधियों में लिप्त होता जा रहा है, उससे सामाजिक सद्भाव और राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में पड़ती दिखाई दे रही है। बजरंग दल के सदस्य गौ रक्षा या लव जिहाद के नाम पर सरेआम हथियार लेकर घूमते दिख रहे हैं। हिंसा और आतंक से जुड़े उनके वीडियो वायरल होकर खौफ पैदा कर रहे हैं। दुर्भाग्य की बात यह है कि पुलिस और प्रशासन भी उनके साथ खड़े दिख रहे हैं। हरियाणा कांड का आरोपी तो गृह मंत्री अमित शाह के साथ फोटो में भी दिखलाई पड़ रहा है, यानी उस जैसे लोगों को सरकार का संरक्षण भी प्राप्त हो रहा है। सवाल उठता है कि बजरंग दल को ये छूट क्यों मिल रही है? क्या किसी दूसरे धार्मिक समुदाय के किसी व्यक्ति या संगठन को इस तरह की हरकतें करने की छूट ये सरकार देती, ये प्रशासन और पुलिस की तरफ से मिलती? उदाहरण तो इस बात के अधिक हैं कि ऐसे लोगों और संगठनों के खिलाफ भी सरकार कार्रवाई करती है जिनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है।
दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आज की बात। इस कार्यक्रम में हम हर गुरुवार को चर्चा करते हैं भारत के महत्वपूर्ण विषयों पर। कार्यक्रम आज की बात
वहीं ये भी सवाल उठता है कि जिस व्यापकता के साथ बजरंग दल जैसे कट्टरपंथी हिंदू संगठनों को हथियार से लैस किया जा रहा है और वे खुलेआम हथियारों का प्रदर्शन कर रहे हैं और उसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं, क्या ये भारतीय संविधान और कानून का खुला उल्लंघन नहीं है? अगर इन संगठनों की गतिविधियां गैर कानूनी है तो फिर इन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? इन सवालों के जवाब में भारत के पूर्व IPS अधिकारी और राजनीतिक टीकाकार विभूति नारायण राय का कहना है कि
देखिए, अगर आप शुद्ध कानून और संविधान की बात करें तो राज्य को छोड़ करके किसी को भी सशस्त्र रहने का अधिकार नहीं है। शस्त्र का लाइसेंस भी राज्य देता है। अगर मुझे अपने व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए हथियार रखने हैं तो मैं राज्य से ही लाइसेंस लेता हूं, और बहुत सारे हथियार हैं जो प्राइवेटेड हैं, जो प्रतिबंधित है, उनका लाइसेंस भी नहीं दिया जा सकता, राज्य भी नहीं देती। तो ये सशस्त्र संगठन तो बनाने का किसी को भी अधिकार नहीं है, चाहे माओवादी हो, चाहे जिहादी हो, चाहे ये हिंदुत्व के ये पुरोधा हो, किसी को इसका अधिकार नहीं। तो जो भी है ये गलत है, और इनकी गलती थोड़ा ज्यादा खतरनाक इसलिए, वैसे तो किसी भी संगठन, जो जितने सशस्त्र संगठन देश में है, मैं समझता हूँ कि सभी खतरनाक हैं, लेकिन इनका खतरा ज्यादा बड़ा है क्योंकि वो मेजोरिटी कम्युनिटी को ये विश्वास दिलाते रहते हैं कि वो खतरे में है। ये देखिए, पूरी दुनिया में दक्षिण का जिस तरह से उभार हुआ है और लेफ्ट जैसे जैसे रिसीड किया है, तो पूरी दुनिया में ये बात समझाने की कोशिश की जा रही है कि किसी भी कंट्री में, किसी भी देश में, किसी भी क्षेत्र में जो बहुसंख्यक है, जो वहाँ के, जो ये क्लेम करते हैं कि वही वहाँ के मूल निवासी हैं, उनकी आइडेंटिटी को खतरा है। जो बाहर से लोग आ रहे हैं शरणार्थी के तौर पर, जो और किसी दूसरी वजहों से आकर के वहाँ बस रहे हैं, खतरा साबित हो रहे हैं। जो घोषित जिसका लक्ष्य ऐसा हो कि भारतीय संविधान जिसके लिए पवित्र ना हो, जो भारतीय संविधान के जो घोषित उद्देश्य हैं उनके खिलाफ काम कर रहा है, तो शुरू से ही आतंकवादी। ये अलग बात है कि अब पिछले 7-8 सालों से, जब से मोदी जी सरकार में आए हैं, तो RSS का एक अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। देखिए, ये तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बहुत सारे फ्रंटल संगठन हैं, और जिसमें ये बजरंग दल भी है। अब बजरंग दल या दूसरे फ्रंटल संगठनों का एक ही उद्देश्य है, किसी तरह भारतीय जनता पार्टी, जो उनका पॉलिटिकल फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है, वो सत्ता में रहे। वो सत्ता में रहेगा तो बहुत सारे उद्देश्य इनके आसान होते जाएंगे, बहुत सारे उद्देश्य ये हासिल करते जाएंगे।
दिलचस्प बात यहाँ ये है कि अगर कट्टरपंथी हिंदू संगठनों की जगह किसी अन्य समुदाय का कोई संगठन होता, विशेषकर अगर कोई मुस्लिम संगठन होता, तो उस पर अब तक ना जाने कैसी कैसी पाबंदियां लग चुकी होती, भले ही उनके खिलाफ कोई सबूत होता या ना होता, बस उनके आगे मुसलमान नाम होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर सीमी और PFI जैसे मुस्लिम संगठनों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की गई, जबकि आज तक उनके खिलाफ सरकार कोई सबूत पेश नहीं कर सकी है। यहाँ सवाल यही है कि जब अल्पसंख्यक समुदाय खासकर मुस्लिम समुदाय से संबंधित संगठनों पर केवल शक की बुनियाद पर प्रतिबंध लग सकता है, तो फिर बजरंग दल, हिंदू सेना, आरएसएस जैसे कट्टरपंथी और आतंकी संगठनों के खिलाफ तो सारे सबूत होने के बावजूद क्यों सरकार पाबंदी नहीं लगाती है? इन सवालों के जवाब में भारत की वरिष्ठ पत्रकार एवं राजनीतिक टीकाकार पूर्णिमा एस त्रिपाठी कहती हैं कि
अभी एक इकोसिस्टम की बात की थी हमारे माननीय कानून मंत्री ने, जब ये सोरोस की या हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने कहा था इकोसिस्टम। तो जो आज हमारे देश में इकोसिस्टम है, उसमें आपको क्या लगता है कि कोई बजरंग दल पे कार्यवाही की बात करेगा? कहीं से मांग उठेगी क्या? वो हम आप जैसे पत्रकार बैठ के इस पर हम बहस कर सकते हैं, लेकिन हमने किसी भी राजनीतिक पार्टी को देखा क्या कि बजरंग दल के ऊपर बैन लगाने की डिमांड कर सके, खुल के उनके खिलाफ बयान दे और कहे कि इनको बैन किया जाए? और ये हाल तब है जबकि 2008 से, जबकि उस समय सेंटर में कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, तब से इनके खिलाफ कई बार शिकायतें आई हैं। इतने हीनस कांड जो ओडिशा में हुआ था, ग्रेहम स्टेन्स वाला, आप लोगों को याद होगा, मतलब इतना ब्रूटल किलिंग जिसमें कि जिंदा जला के उसके बच्चों के साथ उसको मार दिया गया, उस तक में इनका हाथ होना सामने आया था। बाकायदा एविडेंस शायद पुलिस नहीं दे पाई थी या जानबूझ के नहीं दिया था, मुझे नहीं पता, लेकिन उनका नाम तो उस वक्त भी आया था और तभी से इनकी गतिविधियां सामने आती रही हैं। मध्य प्रदेश वगैरह में, उड़ीसा में, कर्नाटक में तो क्रिश्चियंस के ऊपर अटैक, मतलब क्रिश्चियंस के लिए तो इतनी मुसीबत इन लोगों ने क्रिएट कर दी थी कि अगर चार लोग संडे को अपने घर में बैठ के चाय पीने के लिए भी इकट्ठा हुए हैं तो उनके घर पे तोड़फोड़ शुरू हो जाती थी कि ये कन्वर्जन करा रहे हैं, धर्म परिवर्तन की यहाँ पे एक्टिविटी चल रही है। तो इनकी गतिविधियां तो बहुत सालों से चल रही हैं, लेकिन जो हमारा इकोसिस्टम है वो इनके खिलाफ कुछ करने की हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहा है। और अभी तो हमने खुद प्रधानमंत्री जी को देखा, मतलब वो जैसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, पठान को लेकर जब इन्होंने चारों तरफ अफरा तफरी मचाई, पोस्टर जलाए और ये हॉल्स में जाकर तोड़फोड़ करने की कार्यवाही की, तो उन्होंने एक तरह से इनसे लगा, बिल्कुल हाथ लिटरली नहीं जोड़े, लेकिन लगा कि हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि भाई इस तरह की कार्यवाही नहीं होनी चाहिए, इस तरह की हरकतें नहीं होनी चाहिए। खुल के ये कहना कि ये एक इलीगल काम कर रहे हैं, एंटी सोशल एलिमेंट है, ये हमने किसके मुंह से सुना है? किसी के मुंह से नहीं सुना है। और जब इनकी तस्वीरें आ जाती हैं बड़े बड़े बीजेपी के और हमारे सरकार के बड़े बड़े लोगों के साथ, तो फिर किस एडमिनिस्ट्रेशन की हिम्मत होगी कि इनके ऊपर कार्यवाही करे या इनके ऊपर बैन लगाने की सोच भी सके?
मिलाकर सरकार की भेदभावपूर्ण नीतियों और कार्रवाइयों ने ऐसे कट्टरपंथी संगठनों को ताकत दी है जो बेखौफ होकर गैर कानूनी और आतंकी कार्रवाइयां अंजाम देते रहते हैं। सरकार के समर्थक सरकार की आलोचना करने वालों के खिलाफ आधारहीन शिकायत दर्ज करते हैं और साथ ही भाजपा समर्थक भीड़ अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों को धमकी देती है, उन्हें हैरान परेशान करती है और उन पर हमला करती है। हिंदुओं द्वारा पवित्र मानी जाने वाली गाय की रक्षा के लिए भाजपा नेताओं ने बढ़ चढ़कर बयान दिए हैं, जबकि यही भाजपा पूर्व उत्तर और गोवा जैसे राज्यों में खुलेआम गाय के मांस की छूट देती है। बहरहाल, अगर भारत में वर्तमान में जारी नफरत की राजनीति का सिलसिला यूं ही जारी रहा, धर्म के नाम पर लोगों में टकराव बढ़ता रहा और सत्ता के लिए संविधान की लिंचिंग होती रही, तो वो दिन दूर नहीं है कि जब भारत को मां मानने वाले अपने हाथों से इस महान देश की लिंचिंग कर डालेंगे और उसके बाद पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचेगा। दोस्तों, कार्यक्रम का समय अब यहीं समाप्त होता है, हमें अनुमति दें।
दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा। अब आपकी सेवा में प्रस्तुत किया जा रहा है कार्यक्रम
सफल महिलाएं।
सफल महिलाएं।
दोस्तों, कार्यक्रम सफल महिलाएं की एक अन्य कड़ी के साथ आपकी सेवा में उपस्थित हैं अख्तर रिज़वी और मरियम मेहरदादी का सलाम स्वीकार कीजिए।
दोस्तों, चीजों को समझने की क्षमता हर मनुष्य में भिन्न होती है। महिला या पुरुष होना इसका कोई मापदंड नहीं है। महिला होने के नाते न ही आप में शक्ति कम होती है और न ही दिमाग, बस आपको अपने हुनर को पहचानने की आवश्यकता है। इस्लाम की नज़र में अगर महिलाएं अपने व्यक्तिगत विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहती हैं तो इसके लिए संतुलित और बहुआयामी सक्रियता अंजाम दे। जैसे अपने व्यक्तिगत विकास पर ध्यान देने के साथ साथ परिवार की मुख्य धुरी होने की वजह से उसे उस पर भी ध्यान देना होगा। इसके अलावा सामर्थ्य और गंभीरता के साथ सामाजिक क्षेत्रों में उपस्थिति भी जरूरी है।
आज ईरान की इस्लामी क्रांति ने इस्लामी शिक्षाओं पर आधारित महिलाओं का एक ऐसा नया मॉडल दुनिया के सामने पेश किया है। इस नए मॉडल में महिलाओं की घर और बाहर दोनों जगह प्रमुख प्रभावशाली भूमिका सामने आती है। महान इस्लामी क्रांति की सफलता के बाद नैनो, परमाणु ऊर्जा, वायु और अंतरिक्ष एवं बुनियादी विज्ञान के क्षेत्रों के साथ साथ प्रौद्योगिकी आविष्कारों और नवाचारों के विभिन्न आयामों में ईरानी महिलाओं की प्रगति उल्लेखनीय है। ईरानी महिलाओं ने ये दुनिया को दिखा दिया कि वे भी सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों में पूरी तरह सक्रियता के साथ मौजूद हैं। वहीं धार्मिक मान्यताएं और इस्लामी मूल्य उन्हें विभिन्न व्यक्तिगत और सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने से नहीं रोक सकते, बल्कि ये इस्लामी सिद्धांत उन्हें सही दिशा की ओर निर्देशित करते हैं।
जैसा कि ये सब जानते हैं कि चूंकि खेलों का संबंध शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य से है, इसलिए खेलों में महिलाओं की उपस्थिति भी तार्किक और उनके अधिकारों का हिस्सा मानी जाती है। आज दुनिया भर में बड़ी संख्या में विभिन्न खेलों में महिलाओं की उपस्थिति को देखा जा सकता है। ईरानी अधिकारियों द्वारा महिलाओं के खेल पर विशेष रूप से हाल के वर्षों में दिए गए ध्यान से महिला एथलीटों की प्रतिभा का विकास हुआ है और उनके द्वारा कई सफलताएं अर्जित की गई हैं।
वास्तव में महिलाओं के खेल का विकास पूरे समाज में खेलों के विकास के मुख्य तरीकों में से एक है। सामाजिक प्रशंसा और उचित समर्थन कार्यक्रमों ने महिलाओं की भागीदारी की गुणवत्ता और मात्रा में और सामान्य रूप से ईरानी महिलाओं के खेलों की गुणवत्ता में वृद्धि की है। एक खेल प्रशिक्षक के दृष्टिकोण से मनोविज्ञान में प्रेरणा शायद सबसे दिलचस्प और शिक्षाप्रद विषय आज के खेल हैं। आज खेल के लगभग हर मैदान में ईरानी महिलाएं न केवल बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पदकों को अपने नाम कर रही हैं।
शतरंज ईरान के लिए सबसे गौरवपूर्ण खेलों में से एक है। विश्व शतरंज महासंघ, जिसने जारी वर्ष को महिलाओं के शतरंज के लिए विशेष किया था, उसने विश्व ओलंपियाड के मौके पर एक विशेष समारोह के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में सर्वश्रेष्ठ महिला शतरंज खिलाड़ियों के नामों की घोषणा की है। भारत के चेन्नई शहर में आयोजित इस समारोह में दुनिया की 13 शतरंज महिलाओं को विभिन्न क्षेत्रों में सम्मानित किया गया और शादी परिदर को दुनिया में महिलाओं के सर्वश्रेष्ठ शतरंज कोच के रूप में एक विशेष पुरस्कार दिया गया।
शादी परिदर ईरान शतरंज महासंघ की उपाध्यक्ष हैं, जो इन दिनों विश्व ओलंपियाड में महिला राष्ट्रीय टीम के साथ हैं। वो पहली ईरानी शतरंज खिलाड़ी हैं जिन्होंने महिलाओं के ग्रैंड मास्टर का पद हासिल किया है। शादी परिदर ने शतरंज सीखना और खेलना तब शुरू किया जब वो 7 साल की थी। 1994 के साल 2000 तक वो लगातार राष्ट्रीय स्तर पर लड़कियों की होने वाली प्रतियोगिताओं में 10, 12 और 14 आयु वर्ग की खिलाड़ियों में चैंपियन थीं। जब उनसे ये पूछा गया कि आपने अब तक कितने मेडल जीते हैं, तो शादी परिदर बताती हैं कि मेडलों की संख्या बहुत ज़्यादा है और मुझे ठीक ठीक याद भी नहीं है, लेकिन आयु की हर कैटेगरी की होने वाली प्रतियोगिताओं में मैं शामिल ज़रूर होती थी।
शादी परिदर कहते हैं कि मैं 5 बार ईरानी युवा चैंपियन बनी और इसी साल मुझे इसका वर्ल्ड चेस फेडरेशन FIDE की ओर से मास्टर खिताब मिला। 14 साल की उम्र में मैं शतरंज की अंतर्राष्ट्रीय मास्टर का खिताब अपने नाम कर दिया। 14 और 16 साल की उम्र के बीच मैं 2 बार पश्चिम एशिया की चैंपियन बनी। मैंने एशिया में व्यक्तिगत रूप से 3रा स्थान 2 बार हासिल किया। 16 साल की उम्र में मैंने एशिया के जूनियर्स का खिताब जीता और मैं एशियाई शहरों की प्रतियोगिता में व्यक्तिगत रूप से 3रा स्थान पाने वाली पहली लड़की बनी। साथ ही मैंने विश्व छात्र टूर्नामेंट में 2रे स्थान का खिताब भी जीता और 18 साल की उम्र में मैंने विश्व महिला शतरंज चैंपियन एंटोनेटा स्टेफानोवा को हरा कर महिला शतरंज ग्रैंड मास्टर का खिताब अपने नाम किया। मैं अपने ईश्वर का धन्यवाद करती हूं कि उसने मुझे इतनी क्षमता दी है कि मैं अपने देश के लिए गर्व का कारण बन सकी। वर्ष 2007 में मकाऊ में होने वाले इंडोर एशियाई खेलों में परिदर ने व्यक्तिगत रैपिड शतरंज में रजत पदक और टीम रैपिड शतरंज में कांस्य पदक जीता और 2009 क्वांग निन एशियाई इंडोर गेम्स में उन्होंने टीम रैपिड शतरंज में कांस्य पदक भी जीता।
दोस्तों, शादी परिदर ने वर्ष 2003, 2005 और 2008 में एशियाई महिला टीम शतरंज चैंपियनशिप में 3री व्यक्तिगत खिलाड़ी बनी और 2009 में उन्होंने व्यक्तिगत पहला और टीम में 3रा स्थान हासिल किया। परिदर के अनुसार ईरान के पास इस क्षेत्र में सफल होने की अपार क्षमता है। सारा खादिम अशरिया जैसी खिलाड़ी के होने की वजह से ईरानी महिला शतरंज खिलाड़ियों के पास इस खेल में दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जीतने की क्षमता है। रेफरी बनने के क्षेत्र में भी हमारे पास ये काफ़ी क्षमता है। वैसे इस बात में कोई शक नहीं है कि खेल कूद हर इंसान के जीवन का सबसे बड़ा स्वाभाविक हिस्सा है। बॉडी बिल्डिंग के क्षेत्र में विशेषज्ञों के मुताबिक जब एक युवा घर के बाहर खेल के मैदान में जब कठिन परिश्रम करता है तो जहां उसके खेल में निखार आता है वहीं वो हर खेल की प्रक्रिया का आनंद भी अच्छे से लेता है। लेकिन शतरंज महासंघ का खेल को लेकर अलग नजरिया है। उसके अनुसार हम रणनीतिक खेलों को उन खेलों से बदलते हैं जो पल में रक्त एड्रेनालिन का स्तर बढ़ाते हैं। शतरंज एक क्लासिक रणनीति खेल है जो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ दिमागों को चुनौती देता है।
शतरंज सबसे पुराने खेलों में से एक है जो लोगों के बीच लोकप्रिय रहा है और आज तक जीवित है। ये खेल 1500 वर्ष से अधिक पुराना है और कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इस खेल का मूल स्थान ईरान है। कुछ लोग इसका श्रेय भारतीयों, यूनानियों, रोमनों, बेबीलोनियों, सिथिनियों, मिस्रियों, यहूदियों, चीनियों, अंग्रेजों और अरबों को देते हैं। ये सच है कि शतरंज खेलना शारीरिक शक्ति पर आधारित नहीं है, लेकिन पेशेवर और विशिष्ट शतरंज खिलाड़ियों के लिए अच्छी शारीरिक स्थिति में होना जरूरी है।
दोस्तों, पेशेवर खिलाड़ियों का खेल आमतौर पर 7 से 9 घंटे तक चलता है और छोटी सी गलती का मतलब है कि खिलाड़ी अपनी एकाग्रता खो देता है और जल्दी हार जाता है। इसीलिए शतरंज के खिलाड़ियों के लिए फिटनेस और शारीरिक स्वास्थ्य बहुत ही जरूरी है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने शतरंज को एक खेल के रूप में मान्यता दी है। हालांकि इस मुद्दे का ओलंपिक में शतरंज प्रतियोगिताओं को और अधिक प्रमुख बनाने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन ये दर्शाता है कि इस खेल की अंतर्निहित विशेषताएं अन्य खेलों से अलग नहीं है।
आम धारणा के विपरीत शतरंज के खेल और इसके पेशेवर खिलाड़ियों के पास शारीरिक फिटनेस के अलावा बहुत उच्च स्तर की मानसिक तैयारी होनी चाहिए। एक पेशेवर खिलाड़ी का प्रशिक्षण और कार्यक्रम बहुत कड़ा और सख्त होता है। इसके अलावा उसे खेल शुरू होने से पहले, खेल के दौरान और बाद में रीति रिवाजों और शिष्टाचार का पालन करना पड़ता है। ये जानना दिलचस्प है कि इन नियमों का पालन न करने पर गंभीर दंड और विभिन्न जुर्माना लगाया जा सकता है। शादी परिदर ने 4 बार राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप जीती है और पहली ईरानी महिला शतरंज खिलाड़ी हैं जो ग्रैंड मास्टर के स्टेट तक पहुंची है। वर्तमान में वो देश के महिला शतरंज महासंघ की उपाध्यक्ष हैं और वो हमेशा इस प्रयास में रहती हैं कि इस खेल में प्रतिभाशाली और सक्षम खिलाड़ियों का समर्थन करके उन्हें सामने लाया जा सके।
शतरंज के खेल से सीखे गए पाठों के बारे में बात करते हुए वो बताती हैं कि सोचना पहला सिद्धांत है। आपको कई जगह सही फैसला लेना होता है और ऐसे में शतरंज ने मेरी काफी मदद की है। कई जगह रिस्क लेना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है, कई जगह त्याग करना पड़ता है। ये बातें मैंने शतरंज से सीखी हैं। इस खेल ने मेरी कमजोरियों और मेरी ताकत को भी मुझे दिखाया है। मेरी कमजोरियां क्या हैं और उन्हें ठीक करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। इसी तरह इसने मुझे सिखाया कि जीवन में और कठिन समय में सबसे अच्छे निर्णय कैसे लिए जाएं। साथ ही जीवन की समस्याओं में सब्र, धैर्य और संकट में उससे निपटने की शक्ति इत्यादि, ये सब वो बातें हैं और वो ये चीजें हैं जो मुझे शतरंज से सीखने को मिला है। ये सब शतरंज के खेल के नतीजों का एक हिस्सा है।
तो दोस्तों, कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है, अनुमति दीजिए।
दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा और अब समय हो चुका आज के मुख्य समाचारों के सारांश का। राष्ट्रपति रईसी का कहना है कि दुश्मन ने हमारी प्रगति को रोकने के लिए जनता में निराशा फैलाई। तेहरान का कहना है कि जनरल कासिम सुलेमानी मुस्लिम देशों और राष्ट्रों के बीच भाईचारे के सूत्राधार थे। इराक में एक सैन्य हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया, कई सैनिक मारे गए हैं और भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर नकेल कसने की कोशिश जारी है। दोस्तों, हमें आशा है कि हमारा ये प्रसारण भी आपको सदा की भांति पसंद आया होगा। कार्यक्रमों के बारे में अपने विचारों एवं प्रतिक्रियाओं से हमें अवश्य अवगत कराइएगा। हमारा ईमेल आईडी है hindi@ws.irib.ir। तो इसी के साथ अख्तर अब्बास और साथियों को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज़।